ग्रोथ मंत्रा, ज्वेलरी व्यवसाय में फायदा अचूक मापने की चतुस्सूत्री। आपके लिए लिख रहे हैं श्री कैलाश भट्ट। लगभग 20-25 साल पहले की एक बात मुझे याद आ रही है। मैं एक ज्वेलर के पास गया था, तब उनके पिताजी के साथ प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी ऐसे विषयों पर चर्चा शुरू थी। वे कह रहे थे, हमारी पद्धति कुछ ऐसी है कि फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में जो स्टॉक था और वर्ष के अंत में अगर वो स्टॉक बढ़ जाता है तो ऐसी वजन में हुई बढ़ोतरी हम प्रॉफिट के तौर पर कंसिडर करते हैं। देखा जाए तो ये तरीका कुछ साल पहले तक ठीक था, लेकिन समय के साथ ज्वेलरी इंडस्ट्री में कई बदलाव हुए हैं और हो भी रहे हैं। पहले के समय में मेटल में होने वाला प्रॉफिट अब कम होते जा रहा है, क्योंकि मेटल के रेट में ज्यादा से ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है। लेकिन इसी बीच लेबर में होने वाले प्रॉफिट हालांकि बढ़ रहा है, और साथ ही ज्वेलरी में भी अब एमआरपी या पर पीस कीमत वाले ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होने वाले आइटम बेचे जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं। इसके अलावा डायमंड्स और स्टोन्स में भी प्रॉफिटेबिलिटी अधिक है, जिस वजह से अब डायमंड आइटम्स भी स्टॉक का हिस्सा बन चुके हैं। और इसी वजह से ही अब वर्ष की शुरुआत में मेटल के वजन और वर्ष के अंत में मेटल के वजन के बीच का अंतर यानी प्रॉफिट, यह विचार ही लुप्त हो चुका है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने ज्वेलरी व्यवसाय में छोटे छोटे जटिल और पेचीदा लेन देन यानी व्यवहार होते रहते हैं। मेटल के रेट में भी लगातार उतार चढ़ाव होते रहते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि ज्वेलरी व्यवसाय में प्रॉफिटेबिलिटी को अचूक मापना मुश्किल होता है। फिर इसके लिए क्या करना चाहिए, इसी बात पर ही अब हम चर्चा करने वाले हैं। यानी निम्नलिखित अनुसार ज्वेलरी व्यवसाय में फायदा अचूक मापने की चतुस्सूत्री ध्यान में लेने वाले हैं। एक, ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट पर नियमित नजर रखना। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आपको लगातार दिखाई देना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट चाहे नेट वेट पर हो या फाइन वेट पर, उसे बिल्कुल सहज सुचारू पद्धति से ही सेट करना चाहिए। ऐसा करने से आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ही प्रॉफिट एंड लॉस लगातार पता चलता रहेगा। इसके साथ ही ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रुपिंग भी अच्छे से सुस्पष्ट होना चाहिए। उदाहरणार्थ जीपी परसेंटेज के अनुसार, जैसे स्टैंडर्ड बार या बुलियन का अलग ट्रेडिंग अकाउंट, ओल्ड गोल्ड का अलग ट्रेडिंग अकाउंट, 22 कैरेट के गहनों का अलग ट्रेडिंग अकाउंट, 18 कैरेट का डायमंड का अलग ट्रेडिंग अकाउंट आदि। इस वजह से हमें उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे से समझ आती है। ग्रुपिंग के लिए वैल्यूएशन पद्धति भी उचित तरीके से इस्तेमाल करनी होगी, जैसे वेटेड एवरेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक्चुअल, ऐसे चार विकल्पों में से किसी एक पर्याय को लेकर हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तय कर सकते हैं। इसके अलावा करंट रेट में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी हो रही है, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। दो, कैश फ्लो रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए। केवल जीपी या एनपी ही चेक ना कीजिए, बल्कि अपने कैश फ्लो को भी चेक करते रहने की आदत डालना जरूरी है। हर एक ट्रांजैक्शन को कंसीडर करके ही हर महीने का कैश फ्लो हमें सॉफ्टवेयर में से जनरेट करना चाहिए, और यह कैश फ्लो पिछले महीनों के साथ कंपेयर भी करना चाहिए। तीन, हर एक सेल्स बिल पर होने वाली प्रॉफिट की अचूक जांच करनी चाहिए। हर एक सेल्स बिल के पीछे होने वाला प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हर एक बारकोड के साथ परचेस कॉस्ट का रिकॉर्डिंग अवश्य रखें। लूज डायमंड्स और पैकेट में आने वाली अन्य वस्तुओं के लिए भी परचेस कॉस्ट का रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि परचेस कॉस्ट जब सही होगी तभी तो हम हर एक बिल की प्रॉफिटेबिलिटी सही सही निकाल सकते हैं। चार, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट ध्यान में लेनी चाहिए। ज्वेलरी व्यवसाय में वस्तुओं की कीमत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सिक्योरिटी कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है। यही कारण है कि ज्वेलरी आइटम्स की इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट अधिक होती है, और इसलिए अचूक प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट पर ध्यान देना जरूरी होता है। कुल मिलाकर बात यह है कि इन सभी चीजों को हमें प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कंसिडर करना होगा, और ऐसी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हुए अचूक फायदा कमाने के लिए टूल्स का, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना उतना ही महत्वपूर्ण साबित होता है। ज्वेलरी व्यवसाय में फायदा अचूक मापने की चतुस्सूत्री के डूज एंड डोंट्स। एक, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय रिफाइनिंग के गेन और लॉस का हिसाब तथा वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी को जरूर ध्यान में ले, जिससे ट्रेडिंग अकाउंट अधिक उचित तरीके से मेंटेन होता है। दो, लूज डायमंड MRP आइटम के लिए क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन का तरीका एट एक्चुअली यानी एट कॉस्ट रखे, वह अधिक संयुक्तिक साबित होता है। तीन, ट्रेडिंग अकाउंट में इस्तेमाल किए हुए अलॉय का हिसाब उचित तरीके से रखें। चार, अलग अलग कैरेट के अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करें, जैसे 22 कैरेट गहनों का ट्रेडिंग अकाउंट, 18 कैरेट गहनों का ट्रेडिंग अकाउंट आदि। इसके अलावा गोल्डस्मिथ रिसीट को गोल्डस्मिथ इशू का रेफरेंस देने की सॉफ्टवेयर में दी गई पद्धति का अवलंब जरूर करें। ऐसा करने से ट्रेडिंग अकाउंट का वैल्यूएशन सही होता है। पांच, कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते समय सेविंग स्कीम जैसे ट्रांजैक्शन को ध्यान में रखें, क्योंकि इसमें हम ग्राहक से एडवांस के तौर पर पैसे लेते हैं। छह, जो गिफ्ट वाउचर एक्सपायर होते हैं उन्हें कैश फ्लो में कंसिडर करें, क्योंकि उनका असर लायबिलिटी साइड से इनकम साइड में जाते रहता है। सात, गहना आने से लेकर वो बेचा जाने तक की एक श्रृंखला पद्धति बनाकर उस प्रकार से वर्कफ्लो तैयार करें। इसमें परचेस कॉस्ट ऑटोमेटिक कॉपी करें। इस तरह का वर्कफ्लो बनाने के कई फायदे होते हैं। आठ, परचेस कॉस्ट को भी ठीक से मेंटेन रखने के लिए आइटम्स लूज ना रखें, बल्कि उनमें पैकेट्स, लॉट्स तैयार करें या उनका बारकोडिंग करें। नौ, इन्वेंटरी टर्न यानी सेल्स वर्सेस क्लोजिंग स्टॉक के रिपोर्ट को लगातार रिव्यू करें। 10, डेड स्टॉक, स्लो मूविंग आइटम पर भी लगातार निगरानी रखें। तो याद रखें, ज्वेलरी व्यवसाय में फायदा अचूक मापने की चतुस्सूत्री यानी छोटे छोटे नुकसान से बचने की गारंटी।